महाराष्ट्र में जब से बीजेपी के हाथ से सत्ता गई है तब से उनके लिए कुछ अच्छा सा नहीं चल रहा है। पार्टी में ओबीसी बनाम ब्राह्मण नेता की राजनीति दिखाई दे रही है। इस बड़ी खबर को सरल भाषा में समझने के लिए आपको ये पॉडकास्ट पूरा सुनना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी फैक्टर कितने मायने रखता है ये समझाने के लिए सुमित पांडे मेरे साथ हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका आप ही के शो पांडे जी पॉलिटिकल है में। महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया है। इधर एकनाथ खड़से ने भी एनसीपी और शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की है। सर, इसके मायने क्या होंगे?
देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप जमीनी तौर पर देखें तो वहाँ दो ध्रुव उभर के आए पिछले 30-40 सालों में। पहला ध्रुव तो था वो कांग्रेस पार्टी का था, और जो कि बाद में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो एनसीपी कांग्रेस का अलायंस में ही चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो वोट बेस है वो एक ही रहा। वो रहा 3 M, 3 M's कहते थे। एक तो उसमें माइनॉरिटीज़ वोट, एक मराठा वोट, और एक तीसरा वोट उसमें महार का, जो कि दलित वोट का होता था जी। इसके विरोध में और इसके सामने, इसके समकक्ष शिवसेना और बीजेपी ने अलायंस करके एक अपना ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, जिसमें कि एक तो महाराष्ट्र या मराठा पॉलिटिक्स या मराठा नेशनलिज्म पर शिवसेना ने अर्बन एरियाज़ में अक्रॉस कास्ट लाइंस एक लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की। उसमें एक हिंदुत्व का भी पुट था कहीं पर, लेकिन मराठा नेशनलिज्म या मराठी नेशनलिज्म का एक साफ तौर पर हम देखते हैं मोबिलाइजेशन का उनका एक नारा था। साथ में बीजेपी जुड़ी, लेकिन इन लोगों को दिक्कत क्या आती थी कि शहरी क्षेत्रों में तो ये पार्टियां ठीक कर ले जाती थी पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि एक कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स थी, कास्ट पॉलिटिक्स थी, उसमें एनसीपी शिवसेना को परास्त करना इनके लिए मुश्किल रहा। तो इन पार्टीज ने भी अपना एक कास्ट बेस बनाने की कोशिश की। खासकर बीजेपी ने उत्तरी महाराष्ट्र में, विदर्भ के इलाके में, एक नॉन मराठा जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो कि एग्रेरियन कम्युनिटीज़ हैं, किसानी करती हैं, खेतीहर हैं, उनको मोबिलाइज किया। तो उसके तहत उन्होंने उस तरह के नेता निकाले, जैसे कि महाराष्ट्र में जोड़ी होती थी प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की। प्रमोद महाजन ब्राह्मण नेता थे, कास्ट से ब्राह्मण थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो वहाँ पर मोबिलाइजेशन उन्होंने किया वो गोपीनाथ मुंडे के नाम पर किया, क्योंकि वो एक मराठवाड़ा के इलाके से, भीड़ से, एक बैकवर्ड नेता के तौर पर उनको उभारा, उनकी छवि आई। इसी तरह एकनाथ खड़से भी बहुत पुराने भाजपा के नेता हैं, 40 साल की उनकी राजनीति है भाजपा में, और उत्तरी महाराष्ट्र में उन्होंने एक ओबीसी मोबिलाइजेशन में और एक चेहरे के रूप में बीजेपी ने उनको डेवलप किया। दिक्कत भाजपा में तब आई जब पिछली बार सरकार तो बनी, लीडरशिप गई फडणवीस जी के पास, लेकिन वोट बेस तो एक ओबीसी था वहाँ पर, उनके नेता जो थे वो मंत्री भी रहे जी। मुझे लगता है कि उस जो उनका पूरा टेन्योर रहा है फडणवीस जी का, उसमें आप देखते हैं बीच बीच में कई बार बैकवर्ड लीडरशिप जो है उसको लेकर एक तनातनी पार्टी के भीतर हुई है। जैसे खंडसे को मंत्रिपरिषद से हाथ धोना पड़ा, उन पर कुछ आरोप लगे और उनको हाथ धोना पड़ा, तो वो एक मामला उस टाइम तो दब गया और वो भी शायद किनारे हो गए। वहीं पंकजा मुंडे का ये कहना था कि मुझे हराया गया है, उनका आरोप कुछ पार्टी के नेताओं की तरफ था कि मैं अपने जो कज़न हैं धनंजय मुंडे, जो एनसीपी में ज्वाइन कर लिए गोपीनाथ मुंडे के भतीजे, उनसे हारी, लेकिन पार्टी ने शायद मेरी मदद नहीं की वहाँ पर मैं हारी।
वो सीधे सीधे ये भी कहती रही हैं कि उनकी वैसे भी फडणवीस के साथ कभी जमी नहीं है, तो वो उन पर भी आरोप लगाती रही।
हाँ, उनका एक स्पष्ट आरोप रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब तक कि फडणवीस वहाँ मुख्यमंत्री रहे और सत्ता भाजपा के पास रही तो शायद ये विरोध जो था वो उतना मुखर नहीं था, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इस तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी। और आपने देखा कि वहाँ सत्ता परिवर्तन के घंटों, कुछ घंटों के भीतर ही ये सब चीज़ें होने लगी हैं, तो कुछ कम्युनिटीज़ या उनके लीडर्स जो हैं वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी संख्या ज़्यादा है, वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको उस पावर स्ट्रक्चर में, राज्य की राजनीति में और बीजेपी में खासकर अपनी पावर शेयरिंग में उनको अपनी भागीदारी चाहिए।
सुमित जी, एक ऐसा राज्य जिसमें 40% ओबीसी समुदाय की आबादी है, और किसी भी दल के लिए सरकार बनाने के लिए वो 40% वोट्स बहुत मायने रखते हैं, इसे आप कैसे देखेंगे?
देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि महार मुस्लिम और मराठा का मोबिलाइजेशन जब कांग्रेस और एनसीपी करते हैं तो वो 40-50% अपना वोट मोबिलाइज कर ले जाते हैं। कांग्रेस को बीच में थोड़ी दिक्कत आ रही थी एनसीपी को, क्योंकि वहाँ पर विकास अघाड़ी अंबेडकर जी की और असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटी और वही महार वोट में डेंट कर रहे थे। उसी तरह इस समय लगता यह है कि एनसीपी शिवसेना कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो बीजेपी का मूल वोट है, कोर वोट है, उसको कहीं से डिस्टर्ब किया जाए। तो अगर इस तरह के प्रमुख चेहरे, इस तरह के प्रमुख लोग अगर बाहर निकलते हैं और अपनी बातें रखते हैं या विरोध के स्वर आते हैं तो कम्युनिटी में एक मैसेज तो जाता ही है। तो आप उनके कोर वोट बेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि इनमें से ज़्यादातर लोग शिवसेना से जाके मिले हैं, मुलाकात पवार साहब से भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जो कि अपने आप को अगर बीजेपी से हटती है या उनके नेता तो ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे ख्याल से शिवसेना में वो अपने आप को महसूस करेंगे। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं और वो अपने आप को असर्ट करना चाह रहे हैं।
एक आखिरी सवाल ये कि महाराष्ट्र की जो राजनीति को अगर मैं इस समय देखूं तो उनके पास, बीजेपी के पास पंकजा मुंडे के अलावा कोई बड़ा ओबीसी नेता नहीं है।
एकनाथ खड़से हैं ना, वो बहुत काफ़ी बड़े नेता हैं। खड़से साहब सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो सबसे मेरे ख्याल से वो प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के कंटेम्प्रेरी हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। वो साइडलाइन हो गए हैं और एक तरह से जब फडणवीस जी की सरकार बनी तो वो नंबर टू ही थे उस सरकार में। उन पर आरोप लगे, उनको छोड़ना पड़ा, वो हाशिए पर रहे राजनीति के पिछले 3-4 साल में, लेकिन उनका अपना एक चेहरा है और उनकी अपनी एक काम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो वो एक इशू वहाँ पर रहेगा। दूसरा मुझे लगता है कि बीजेपी के जो दोनों बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में इस समय, वो एक ही कम्युनिटी से आते हैं, नितिन गडकरी और फडणवीस दोनों महाराष्ट्र में नागपुर से आते हैं, दोनों संघ के क्लोज माने जाते हैं और दोनों एक ही ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं। अब बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से इस समय ये महत्वपूर्ण होगा और शायद इसी बात का प्रेशर भी है को उनको अपने आप को कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि है उनकी, उसमें कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप को अकोमोडेट करता हुआ देखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। बीजेपी ने किया क्या कि पिछले 4-5 सालों में कि अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी तो उनको लगता था तो थी ही थी, उन्होंने एनसीपी कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी पर हाथ सेंध मारी की तो कई बड़े मराठा नेता, अब जैसे सतारा में क्या हुआ, भोसले साहब जो कि एनसीपी के टिकट पर जीते थे उन्होंने रिजाइन करके बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, हार गए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश क्या थी कि जो एनसीपी कांग्रेस का जो मराठा वोट था उसको तोड़ने की। इस तरह के राज्य लेवल करीब 20-25 ऐसे नेता हैं इस समय वहां पर जो सिंबल पर लड़े बीजेपी के, वो लोग हैं जो कि एनसीपी सिर्फ कांग्रेस के थे और पार्टी ने उनको तोड़ लिया। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस अब हो रहा है, कांग्रेस शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी ने अपने मराठा वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है और इसके बाद अब वो सेंध कर रहे हैं उनके उनके जो ट्रेडिशनल बीजेपी का वोट है। और बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि उनको वो लीडरशिप को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना पड़ेगा या जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि खाली आप अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि मिनिस्कुल माइनॉरिटी है 3-4% है महाराष्ट्र में, उसके ही चेहरे दिखा के आप आगे की वोटों की राजनीति नहीं कर पाएंगे।
तो आगे पंकजा मुंडे के लिए कैसी राह होने वाली है?
देखिए, एक चीज़ तो और इसमें इंटरेस्टिंग है कि हम लोग कई बार पत्रकार के तौर पर भी एनालाइज करने लगते हैं कि चुनाव होते हैं उसके नतीजे आते हैं और कि अब इस तरह की राजनीति खत्म हो गई या वैसी राजनीति खत्म हो गई है, जैसे कि 2014 और 19 के बाद हम लोगों ने कई लोगों ने कहा कि कास्ट बेस्ड राजनीति खत्म हो गई है, मंडल पॉलिटिक्स खत्म हो गई। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर चुनाव का एक अपना यूनिक कैरेक्टर होता है और उस हिसाब से पब्लिक उस पर वोट करती है। तो 2014 मई में जैसे लोगों ने वोट किया वैसे दिसंबर या नवंबर 2019 में ही वोट नहीं किया 6 महीने बाद
जी।
तो कई चीज़ ऐसी हैं, फॉल्ट लाइन ऐसी हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं और अभी भी ज़मीन पर मौजूद हैं। ये अलग बात है कि एक किसी बहाव में या एक किसी माहौल में वो फॉल्ट लाइंस उतनी इमर्ज नहीं होती हैं या उतनी सामने नहीं आती हैं, लेकिन फिर हो सकता है 6 महीने बाद उन्हीं मुद्दों पर या उन्हीं फॉल्ट लाइंस पर या उन्हीं इश्यूज पर फिर चुनाव हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा या हरियाणा में हमने देखा, जहाँ जहाँ बीजेपी एक तरफा चुनाव जीती थी वहाँ वहाँ एक कम्युनिटी ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया और वहाँ का जो नक्शा है वो बदल के रख दिया राजनीतिक।